नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण के लिए 480 बेंच गठित। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज से स्वच्छता सप्ताह का आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल से दिलाया स्वच्छता का संकल्प। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा देश में एलपीजी की कमी नहीं, रोजाना 50 लाख सिलेंडरों का वितरण। और प्रदेश के अस्पतालों में आईसीयू सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है। ये लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों, राजस्व न्यायालयों और अन्य अधिकरणों में लगाई जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफल आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई है। इसके लिए प्रदेश में 10,30,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। इन मामलों के निस्तारण के लिए 480 बेंच गठित की गई है। इन बेंचों के समक्ष पक्षकार आपसी सहमति और सुलह से मामले निपटा सकेंगे। प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। वहीं जोधपुर पीठ में लोक अदालत की शुरुआत हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी करेंगे। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता सप्ताह का आगाज होगा। इस दौरान जयपुर में राज्य स्तरीय और सभी जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत काफी अहम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ये संकल्प है कि राजस्थान स्वच्छता के साथ ही सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े।
ये हमारा संकल्प है कि हमारा राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ कर स्वच्छता का पूरे देश में एक जन आंदोलन बना, इस मिशन का दायरा केवल सड़कों नालियों की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि इसकी वजह से लोगों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया है। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर घर, हर गली, हर पार्क, हर स्मारक स्वच्छ होगा।
कल प्रदेश में विकसित राजस्थान दौड़ रखी गई है। राज्य स्तरीय दौड़ को मुख्यमंत्री श्री शर्मा फ्लैग ऑफ करेंगे। साथ ही सभी जिलों में रन का आयोजन किया जाएगा। कल राजस्थान को जाने डिजिटल क्विज का भी शुभारंभ होगा। वहीं जयपुर में एक जिला एक उत्पाद मेला और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की भी शुरुआत होगी। दिल्ली के बीकानेर हाउस में भी कल से 5 दिवसीय राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार ने देर रात 64 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इसमें 27 एसपी, डीसीपी और 17 डीआईजी शामिल हैं। जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर प्रथम, डीसीपी पूर्व और पश्चिम तथा डीसीपी ट्रैफिक को बदल दिया गया है। अजय सिंह को अतिरिक्त आयुक्त प्रथम बनाया गया है। वहीं रंजीता शर्मा डीसीपी पूर्व और प्रशांति किरण डीसीपी पश्चिम होंगे। यातायात का जिम्मा निश्चय प्रसाद को दिया गया है। अमृता दुहन को उदयपुर, मृदुल कुछावा को बीकानेर और पुष्पेंद्र को सिरोही पुलिस अधीक्षक का जिम्मा दिया गया है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पिछले कई दिनों से काफी तलाश के बाद भी इनका कोई सुराग नहीं मिलने पर अदालत ने आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब किया है। गौरतलब है कि पिछले महीने एसीबी ने इनकी तलाश में छापेमारी कर 9 अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ईरान से ऊर्जा और माल के निर्बाध आवागमन के महत्व पर प्रकाश डाला है। नई दिल्ली में कल हुए अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की।
जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेजेश्कियां से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहां पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हमलों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़े ताकि इस मसले को, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के हो रही है। उन्होंने कहा कि 25,000 एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है और प्रतिदिन 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने लोगों से एलपीजी की बुकिंग केवल आधिकारिक माध्यमों से करने की अपील की है और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने को कहा है। इधर प्रदेश में भी घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों में सतर्कता दल कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जयपुर में जिला रसद अधिकारी ने 3 स्थानों पर कार्रवाई कर 83 गैस सिलेंडर और एक पिकअप जब्त की। देश में करीब 77% रेलगाड़ियां समय से चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समयबद्धता का मापन निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचने वाली रेलगाड़ियों के प्रतिशत से किया जाता है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार के लिए कई रणनीतियां अपनाई है।
आज करीब 25,000 गाड़ियां डेली चलती है रेलवे के नेटवर्क पे, फिर भी वी आर एबल टू नाउ अचीव 24 डिविजन्स ऐसे हैं जिसमें 90% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है और 43 डिविजन्स हैं जिसमें 80% से अधिक है, 8 डिविजन्स हैं जिसमें 95% से अधिक पंक्चुअलिटी आ चुकी है। मदुरई डिविजन, जोधपुर डिविजन, हुबली डिविजन, भावनगर, कोटा, आइजतनगर, रतलाम और अजमेर।
प्रदेश के अस्पतालों में इंटेंसिव केयर इकाइयों ICU सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मानक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कल इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर विशेषज्ञों से सुझाव लिए। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि गंभीर रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं देने और आपात स्थितियों में बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों तथा ICU प्रभारियों से सुझाव मांगे गए हैं। इनके आधार पर गाइडलाइन तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि ICU में संक्रमण रोकथाम, गंभीर रोगियों की उचित देखभाल, प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता सहित विभिन्न सेवाओं को शामिल किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण के लिए 480 बेंच गठित। राजस्थान दिवस समारोह के तहत आज से स्वच्छता सप्ताह का आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल से दिलाया स्वच्छता का संकल्प। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा देश में एलपीजी की कमी नहीं, रोजाना 50 लाख सिलेंडरों का वितरण। और प्रदेश के अस्पतालों में ICU सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।